सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं जय उदरसेननाहो जेन महाकम्मपयडिपाहुडसेलो बुद्धिशिरेणुद्धरियो समप्यो फुफयन्तस्स। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब अपना द्वितीय खंड शुरू हुआ है, सातवीं पुस्तक है अपनी। अब तक तो जीव ठान था, अभी खुद्दा बंद अधिकार शुरू हो जाता है। अब इसमें हम पृष्ठ संख्या 9 पर आ गए हैं। पहले में प्रथम हमने निक्षेप हमने चार देखे कि द्रव्य स्थापना, सॉरी द्रव्य नहीं, नाम स्थापना द्रव्य और भाव। तो नाम बंधक, बंधकों की बात है ना, बंध करने वाले जीवों की। तो नाम बंधक, स्थापना बंधक, द्रव्य बंधक और भाव बंधक, चार प्रकार हमने देखे थे। फिर बंधक के कारण भी देखे थे कि मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद, यहाँ कषाय में ही गर्भित है, कषाय और योग, ये बंधक के कारण कहे गए। बहुत सी जगह समय सार में भी यही चार प्रत्यय है, कर्मकांड में भी यही इन्हीं चार बातों की बात बंधक के कारणों को बताया है। इसमें से प्रमाद को अलग निकालते हैं तो प्रमाद को भी हम अलग से बता देते, पांच कारण बताते। यदि प्रमाद को कषाय में गर्भित करके कहेंगे तो चार कारण बताएंगे। अब शंकाकार पूछता है, यदि यही मिथ्यात्वादी चार बंधक के कारण है तो, अब ये गाथा बताएगा, क्या कहते हैं कि ये जो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये ही अगर बंधक के कारण है तो, अब ऊपर जो तीन नंबर की गाथा प्रस्तुत की है उसको पढ़ेंगे। ओ दया बंधयरा उसमखय मिस्सयाय मोखयरा भावो दुपारिणामियो करणो भयवज्जियो होंती। कि औदयिक भाव, औदयिक लिखा है, औदयिक चाहिए, औदयिक भाव बंध करने वाले हैं, औपशमिक, क्षायिक और क्षायुपशमिक भाव मोक्ष के कारण हैं, तथा पारिणामिक भाव बंध और मोक्ष दोनों के कारण से रहित है। इस सूत्र गाथा के साथ विरोध उत्पन्न होता है, क्योंकि ये तो उन्हें मालूम है उसको कि औदयिक भाव बंध के कारण है, और जो औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक भाव जो है वे तो मोक्ष के कारण है, क्योंकि औपशमिक भाव में तो ये शुरू हो जाता है ना, सम्यक दर्शन वगैरह, और पारिणामिक भाव न बंध का कारण है न मोक्ष का कारण है, तो इसमें कुछ विरोध उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा उसका कहना है। समाधान, ऐसा कहने पर कहते हैं कि विरोध नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि औदयिक भाव बंध के कारण है, ऐसा कहने पर सभी औदयिक भावों का ग्रहण नहीं किया गया है, क्योंकि वैसा मानने पर गति, जाति आदि नाम कर्म संबंधी औदयिक भावों के भी बंध का कारण होने का प्रसंग आ जाएगा। जब औदयिक भाव बंध के कारण है कहेंगे तो उसमें से सभी औदयिक भाव बंध के कारण नहीं है, तो पहले हम देखते हैं औदयिक भाव कौन कौन से हैं, कितने हैं, पहले हम उसको देखेंगे। हाँ, 21 है। तो 21 में से कुछ बताएंगे या 21 बताएंगे तो अच्छा ही है। हाँ, गति औदयिक भाव। हाँ, फिर कषाय। हाँ, कषाय 4। हाँ, फिर लेशा 6। और 3 वेद। हाँ, 3 वेद। फिर असंयम, अज्ञान, अदर्शन, असिद्धत्व। कितने हुए? 12, 9, 21 हो गए। हाँ, गति के पकड़े। देखो, 4 कषाय, 3 वेद, 4 गति, फिर 6 लेशा, और फिर ये अन्य 4। इनमें से कहते गति, जाति आदि जो नाम कर्म के उदय में होने वाले जो भाव है वो बंध के कारण नहीं है। गति औदयिक भाव तो अरिहंतों को भी है, 14वें गुणस्थान वाले को भी है ना? वहां भी गति औदयिक भाव है और असिद्धत्व भी है, तो 14वें गुणस्थान में तो बंध नहीं है। तो सभी प्रकार के औदयिक भावों को बंध में मत गिनो, ऐसा कहते हैं। शंका, देवगति के उदय के साथ भी कितनी ही प्रकृतियों का बंध होना देखा जाता है, फिर देवगति का उदय उनका कारण क्यों नहीं होता? ये मनुष्य गति की बात छोड़ दो कि 14वें में उसके उदय होते हुए भी बंध नहीं, परंतु देवगति के साथ तो बंध होता हुआ दिखाई जाता है, ऐसा इसका कहना है। परंतु क्या देवगति के उदय के कारण बंध होता है? क्या वहां के जो परिणाम है जीव के मोहनी के, अभी उसका उत्तर देंगे, समाधान। ऐसा कहने पर कहते हैं कि उनका कारण देवगति का उदय नहीं होता, ये देवगति के उदय के निमित्त से बंध नहीं है। देवगति में जो विद्यमान मोहनी आदि का उदय है उसके कारण, यानी मोह राग द्वेष आदि जो है उसके कारण, वहां भी जो मिथ्यात्व अविरति जो कुछ होगी, असंयम भाव जो है वहां पर, कषाय है और योग है, उससे बंध है। क्योंकि देवगति के उदय के अभाव में नियम से उनके बंध का अभाव नहीं पाया जाता। कारण क्या बताया? देवगति में, देवगति के कारण अगर बंध मानेंगे तो जहां देवगति का उदय नहीं है वहां बंध का अभाव होना पड़ेगा, परंतु ऐसा है नहीं। जिसके अन्वय और व्यतिरेक के साथ नियम से जिसके अन्वय और व्यतिरेक पाए जावे वह उसका कार्य और दूसरा कारण होता है। क्या कहते हैं? अन्वय और व्यतिरेक, यानी दोनों ओर से उसको सिद्ध होना चाहिए, जिसको अविना भाव कहेंगे हम। देवगति से बंध होता है तो देवगति का उदय जहां नहीं वहां बंध का भी अभाव होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं पाया जाता। जब हम कहेंगे कषाय के उदय में या कषाय से बंध होता है ना, तो कषाय के अभाव में वो कषाय वाला बंध भी, वो सांप्रायिक वाला बंध भी नहीं होगा। या जो अभी हमने 4 कारण बताए, मिथ्यात्व, विरति, कषाय और योग, उनके सद्भाव में बंध है और उनके अभाव में बंध नहीं है। जिसके होने पर जो हो वो तो अन्वय, और उल्टा नहीं होने पर नहीं हो तो वो व्यतिरिक। दोनों ओर से अगर सिद्ध होता है तो उसमें वो कार्य कारणपना बनेगा, इसी को उन्होंने समझाया है। अर्थात जब एक के सद्भाव में दूसरे का सद्भाव और उसके अभाव में दूसरे का भी अभाव पाया जाए, तब उनमें कार्य कारण भाव संबंध संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। इस न्याय से मिथ्यात्व आदि ही बंध के कारण है। उसमें कारणपना जब कहते हैं तो मिथ्यात्व होने पर आदि में ये सारे योग तक सब ले लेना, उसके होने पर बंध होता है और उनके नहीं होने पर बंध नहीं होता है। जैसे अग्नि और धूम, धुआं कि धुआं, अभी उसमें तो एक तरफ से व्याप्ति है खाली, कि धुआं कब होता है? जहां अग्नि हो तो ही धुआं होगा, अग्नि के नहीं होने पर धुआं नहीं होगा। ऐसा मत लगाना कि जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है, क्योंकि वो तो अन्वय व्यतिरिक्त दोनों ओर से उसकी नहीं बात है। धुएं को सिद्ध करना है तो वहां अग्नि होगी ही, अग्नि के बिना धुआं नहीं होगा, ऐसे वहां पर है। और यहाँ पर जहां जहां मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग है वहां वहां बंध है, जहां वे नहीं है वहां बंध भी नहीं है। आप कहेंगे मिथ्यात्व नहीं है तो भी बंध होता है, परंतु वहां अविरति कषाय और योग है, मिथ्यात्व संबंधी बंध रुक जाएगा। अभी अविरति निकल गई, मुनि है तो कषाय और योग है तो उतना बंध है। मिथ्यात्व और अविरति निकल गई है तो उस संबंधी जितने बंध होते थे उतने रुक जाएंगे। अभी दसवें गुणस्थान तक कषाय है तो वहां उस संबंधी बंध है। अब अकेला योग रह गया तो योग के कारण वहां अकेला वो साता वेदने का भी बंध है। इन कारणों में मिथ्यात्व, नपुसक वेद, नरकायु, नरक गति, एकेन्द्रिय, द्विन्द्रिय, तीन्द्रिय व चतुरिंद्रिय जाति, कुंड संस्थान, असंप्राप्त सुरपाटिका सहनन, नरक गति प्रायज्ञानपूर्वी, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इन 16 प्रकृतियों के बंध का मिथ्यात्व उदय कारण है। क्योंकि मिथ्यात्व उदय के अन्वय और व्यतिरेक के साथ इन 16 प्रकृतियों के बंध का अन्वय और व्यतिरेक पाया जाता है। क्या कहते हैं, जहां जहां मिथ्यात्व का उदय है वहीं पर इन 16 प्रकृतियों का बंध होगा, जहां मिथ्यात्व का उदय नहीं है ऐसे दूसरे आदि ऊपर के गुणस्थानों में इन 16 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। तो इन 16 प्रकृतियों को कहते हैं कि उनकी बंध विच्छित्ति कहाँ होती है, तो मिथ्यात्व गुणस्थान में, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय एकमात्र पहले गुणस्थान में ही है। दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का है उदय, पर मिथ्यात्व का नहीं है, तो वहां ये 16 प्रकृतियों का बंध भी नहीं होगा। जब दूसरे में से जो पहले में आ जाएगा नीचे गिरकर, तो ये 16 प्रकृतियों का बंध होने लगेगा। तो हमने अलग उसके ऑर्डर से याद किया था, मिथ्यात्व, मुंडक संस्थान, असंप्राप्त सुप्राटिका सहनन और नपुसक वेद, फिर एकेन्द्रिय, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, बेइंद्रिय, तीनिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, नरक गति, नरक गत्यानुपूरी और नरकायु। अभी इसमें ऑर्डर थोड़ी अलग है, तो इस तरह से इन प्रकृतियों का बंधन नहीं होता मिथ्यात्व के बिना।
यहाँ दूसरी लाइन में असंप्राप्त लिखा है, उस असंप्राप्ता चाहिए।
हाँ, असंप्राप्त, क्योंकि वो शब्द है असंप्राप्त असुरुपाटिका, तो असंप्राप्ता सुरुपाटिका करना इसको। देखो दोबारा फिर देखते क्या मिथ्यात्व के बाद भी कॉमा लगाना। मिथ्यात्व का बंध भी और उदय भी पहले ही गुणस्थान में है। अब नपुसक वेद, उदय कहां तक देखा था हमने, याद है आपको किसी को? हाँ, नौवे गुणस्थान तक उसका उदय है, परंतु बंध तो पहले गुणस्थान वाले को ही है, ऊपर के कहीं भी नपुसक वेद का बंध नहीं है। आगे चलकर देखेंगे स्त्री वेद का बंध भी दूसरे गुणस्थान तक के जीवों को ही है, ऊपर के गुणस्थानों में स्त्री वेद का बंध नहीं है, उदय उसका भी नौवे तक चलेगा। तो ऊपर के गुणस्थानों में वेद का बंध होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, पुरुष वेद का होगा, वेद का होगा, एकमात्र पुरुष वेद का बंध होगा नौवे गुणस्थान तक। तो इसमें अभी ये जो बंध के कारण और उसके साथ जो अन्वय व्यतिरेक के साथ जो संबंध है, ऐसी प्रकृतियों को यहाँ बताएंगे, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन से गुणस्थानों में कौन से प्रकृतियों का बंध का अभाव हो जाता है। ये बात ख्याल में आती ना, इसको बंध विच्छित्ति कहते, विच्छित्ति ने रुक जाना। जैसे कहेंगे ये मिथ्यात्व गुणस्थान में 16 की बंध विच्छित्ति होती है, इसका अर्थ मिथ्यात्व गुणस्थान में तो बंध है, दूसरे, तीसरे या चौथे ऊपर कहीं भी बंध नहीं है, तो उसको कहते मिथ्यात्व गुणस्थान में ही विच्छित्ति हुई, परंतु मिथ्यात्व गुणस्थान में तो बंध है, आगे नहीं है, फिर भी कहेंगे मिथ्यात्व में विच्छित्ति हुई। जैसे हम सब यहाँ बम्बई में इकट्ठे हैं और बाद में कहीं अलग अलग जगह निकल गए, कोई दिल्ली चला गया, कोई देवलाली गया, तो कहाँ आप कहाँ बिछुड़े? तो हम बम्बई में बिछुड़े। हम बम्बई में तो साथ थे, बिछुड़े तो बम्बई छोड़ी तब बिछुड़े हम। फिर भी कहने की पद्धति दो नयों के से कथन होता है, तो यही बम्बई में ही बिछुड़े ऐसा कहते। वैसे यहाँ विच्छित्ति कहाँ हुई? तो मिथ्यात्व में। मतलब वहां समझना मिथ्यात्व में तो बंध है, आगे कहीं नहीं है, तो कहेंगे मिथ्यात्व में बंध की विच्छित्ति हो गई। तो ये जो 16 प्रकृति है उनकी बंध विच्छित्ति यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में है। अब यहाँ बंध का विषय चल रहा है, तो मिथ्यात्व ये बंध का कारण है, और ये जो 16 प्रकृतियों का जो बंध है, तो मिथ्यात्व और इन 16 प्रकृतियों का बंध, इनमें अन्वय से और व्यतिरेक से भी संबंध है। यानी जहां जहां मिथ्यात्व है वहां ये 16 प्रकृतियां बंधेगी, जहां मिथ्यात्व नहीं है वे ये 16 प्रकृतियां भी नहीं बंधेगी। दोनों ओर से सिद्ध हुआ ना इसको, तो इसलिए मिथ्यात्व को इन 16 प्रकृतियों के बंध का कारण कहा। अब अनंतानुबंधी की बात करेंगे, अनंतानुबंधी चतुष्क। तो अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय पहले में भी है और कहाँ है? दूसरे में भी है, परंतु तीसरे आदि ऊपर के गुणस्थानों में नहीं है। तो अनंतानुबंधी के कारण ये जो कुछ प्रकृतियों का उसके साथ जो अन्वय व्यतिरिक का संबंध है, तो जहाँ जहाँ अनंतानुबंधी है वहाँ वहाँ उनका बंध होगा। यानी अभी जो हम 25 प्रकृतियाँ देखने जा रहे हैं उनका बंध पहले में भी है और दूसरे में भी है, परंतु ऊपर कहीं नहीं है। तो विच्छित्ति कहाँ कहेंगे? दूसरे में कहेंगे, क्योंकि पहले में भी बंध है, दूसरे में भी बंध है, परंतु तीसरे चौथे आदि में नहीं है। इसलिए ये जो 25 प्रकृति है वो अनंतानुबंधी चतुष्क के साथ उसका अन्वय व्यतिरेक वाला संबंध होगा। अब हम इसको पढ़ेंगे। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, कौम देना स्त्यान वृद्धि, फिर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ, फिर कौम देना स्त्रीवेद, तिर्यंचायु, तिर्यंच गति, अब ये नाम कर्म के बता रहे, न्यग्रोध, न्यग्रोध यानी न्यग्रोध परिमंडल, ये पूरा नाम उसका। ये किसका नाम है? हाँ, सहना ने के संस्थान है, संस्थान है। हाँ, तो अभी ये बीच वाले चार ले लेंगे यहाँ। देखो मिथ्यात्व में हुंडक संस्थान और असंप्राप्ता सुप्राटिका सहनन, ये छठे नंबर का संस्थान और छठे नंबर का सहनन लिया। अभी अनंतानुबंधी के साथ पहला एक एक छोड़कर बीच वाले चार सहनन और चार संस्थान लेंगे। तो न्यग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक और वामन शरीर संस्थान, बराबर। अभी सहनन भी चार लेना है बीच में, दूसरे से लेकर पांचवे तक। वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज और कीलित शरीर सहनन, फिर तिर्यंच गति प्रायज्ञानुपूर्वी, उद्योत, जहां जहां तिर्यंच गति बनती वहां उद्योत भी बनता है। आतप तो एक इंद्रियों में ही, एक इंद्रिय पर्याय के साथ ही उसका बंद होगा, इसलिए आतप को एक इंद्रिय स्थावर वगैरह उसके साथ ले लिया। दूसरे अनंतानुबंधी के साथ अभी तिर्यंच गति बन रही, तिर्यंचायु आदि यहां तक ही बंधेगी, तो उसके साथ अभी उद्योत को भी लिया। क्या लेते हैं? हाँ, ये तो उद्योत क्या है? ये थोड़े जैसे हम स्कूल में पढ़ते ना, बे के बे बेदुनी चार, तभी समझे नहीं समझे याद ही कर लेते थे और बाद में उसका अर्थ समझ में आता था। वैसे इन प्रकृतियों के नाम अगर हम याद ही कर लेंगे तो बहुत आसान होता है, पूरा ही मोक्ष मार्ग ख्याल में आता है कि कौन सा बंध कहाँ है, यानी बंध की विच्छित्ति कौन सी कहाँ होती है और उदय की विच्छित्ति कौन सी कहाँ होती है। तो प्रत्येक गुणस्थान का स्वरूप हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अब पढ़ेंगे, यही बात आने वाली है बार बार, तो याद हो जाएगा। तो उद्योत तक आए थे हम दूसरी लाइन में, अभी तीसरी लाइन में अप्रशस्त विहायोगति कौम देना। अभी ये जो जो कुछ अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका बंध नीचे के गुणस्थान में ही रुकना शुरू हो जाता है। प्रशस्त व्याहयोगति का बंध तो आठवें तक रहेगा। अब अप्रशस्त यहाँ दूसरे गुणस्थान में ही चली जाएगी, यानी दूसरे गुणस्थान में बंध है, आगे नहीं होगा। दुर्भग दुस्वर अनादेय और नीच गोत्र, जहाँ तक तिर्यंच गति का बंध है वहीं पर नीच गोत्र का भी बंध है। नरक गति का तो पहले गुणस्थान में ही रुक गया। इन प्रकृतियों के बंध का अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय कारण है। ये 25 प्रकृतियां हैं, उनके बंध का कारण कौन है? तो अनंतानुबंधी चतुष्क, क्योंकि उसी के उदय के अन्वय और व्यतिरेक के साथ इन प्रकृतियों का भी अन्वय और व्यतिरेक अतिरेक हुआ है, व्यतिरेक पाया जाता है। ये दो बातें ख्याल में, ये मिथ्यात्व के साथ 16 प्रकृति और अनंतानुबंधी के साथ ये 25 प्रकृति। अप्रत्याख्या करना उसको, अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध मान माया और लोभ। देखो तीसरे गुणस्थान में उदय कौन से कषाय चोकड़ी का है? हाँ, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन। तो अभी अप्रत्याख्यानावरण के साथ जिनका जिनका संबंध है उन प्रकृतियों को बताएंगे, तो उनका बंध तीसरे भी होगा, चौथे में भी होगा, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में बंध की विच्छित्ति है ही नहीं है अलग से। ऐसे कोई बंध रुक जावे तीसरे में, ऐसी कोई विशेषता वहाँ नहीं है, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण है, उसका उदय तीसरे वाले को भी है, चौथे वाले को भी है। तब उस संबंधी जो 10 प्रकृति बताएंगे अभी, वो क्या क्या है? अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध मान माया और लोभ, मनुष्यायु मनुष्य गति, औदारिक शरीर अंगोपांग, वज्र ऋषभ सहनन, नाराच लालो बीच में चलेगा, वज्र ऋषभ नाराच सहनन। यानी पहले नंबर का सहनन दिया, पर पहले नंबर का संस्थान अभी नहीं लेना है, उसका कारण भी बताती हूँ। ये पहले 10 प्रकृतियां पढ़ेंगे हम, फिर इसका कारण बताएंगे। और मनुष्य गति प्रायज्ञानुपूर्वी इन 10 प्रकृतियों के बंध का अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क का उदय कारण है, क्योंकि उसके बिना इन प्रकृतियों का बंध नहीं पाया जाता, उनका उदय होने पर इनका बंध होगा और उसके उदय के बिना इनका बंध नहीं होगा। बराबर, ऐसे अन्वय और व्यतिरेक दोनों पाए जाते हैं। अब ये जो यहाँ सहनन को लिया, संस्थान को क्यों नहीं लिया? हाँ देखो, अब ये जो कौन मनुष्यायु का बंध है, मनुष्य गति भी है और उसके साथ औदारिक अंगोपांग का भी बंध है, तो जिसको औदारिक शरीर संबंधी बंध है तो उसको सहनन तो बंधेगा ही। औदारिक शरीर मनुष्य और तिर्यंचों में पाया जाता है और उन्हीं के सहनन भी पाया जाता है। जो देवगति का बंध कर रहा है, उस देवगति के बंध के साथ सहनन का बंध नहीं होगा, क्या लेना? संस्थान तो बंधेगा क्योंकि उनके आकार है, परंतु वो सहनन नहीं है। सहनन तो हड्डी के जो कुछ मजबूती है उसका जो कोई प्रकार है, वहाँ हड्डियों का ढांचा समूह, उस संबंधी उसको सहनन कहते हैं। और संस्थान तो शरीर का जो कोई आकार है उसको संस्थान कहते हैं। तो अभी मनुष्य गति का जो बंध है वो अप्रत्याख्यानावरण का जहाँ तक उदय है वहीं पर पॉसिबल है। यानी अभी देव और नार की चौथे गुणस्थान वाले हैं तो वे तो मनुष्य गति का बंध करेंगे, तो साथ साथ औदारिक शरीर वगैरह का भी बंध करेंगे, तो उनके वो सहनन का भी बंध होगा। तो सहनन बंधने वाली ये लास्ट लिमिट है, चौथे गुणस्थान वाले। अब यहाँ तो इन जनरल बात है, अभी कोई मनुष्य सम्यक दृष्टि है या तिर्यंच सम्यक दृष्टि है तो वो तो मनुष्य गति में नहीं जाता। कल हमने देखा था ना छठी पुस्तक में, सम्यक दृष्टि तिर्यंच या मनुष्य मरकर कहाँ जाता है? सम्यक्त्व के साथ देव में जाएगा, या सम्यक्त्व होने पर बंध करेगा तो देवगति का बंध करेगा। तो वो तो मनुष्यायु भी नहीं बांधेगा। अभी इसमें देखना है, दस में से कौन कौन सा वो नहीं बांधेगा, कोई मनुष्य सम्यक दृष्टि है या कोई तिर्यंच सम्यक दृष्टि है, चौथे गुणस्थान वाला है। तो देखो अभी ये फिर लिस्ट देखते, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ को तो बांधेगा। मोहनीय में ये जो बात है ना, जिस कषाय का उदय है, जिनका जिनका उनका बंध भी वहां है, मनुष्यायु का नहीं बांधेगा, मनुष्य गति को भी नहीं बांधेगा, क्योंकि सम्यक के साथ अभी वो देवगति को ही बांधेगा। औदारिक औदारिक अंगोपांग को भी नहीं बांधेगा, क्योंकि वो वैकृक वैकृक अंगोपांग को बांधने वाला है ना। और वज्र ऋषभ नारा सहनन को भी नहीं बांधेगा, कितने हो गए। और मनुष्य गति प्रायज्ञानोपूर्वी भी नहीं बांधेगा, जो गति बांधता है उसी की प्रायज्ञानोपूर्वी बांधती है। तो देखो ये मनुष्यायु, मनुष्य गति, औदारिक अंगोपांग, ये औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्र ऋषभ नारा सहनन और मनुष्य गति प्रायज्ञानोपूर्वी, छह हो गए ना। तो इन छह की बंध विच्छित्ति मनुष्य तिर्यंचों में नहीं होगी, ख्याल है। वो तो मार्गणा में जब हम जाएंगे वो उसकी बात, अभी तो जनरल बात करें, चारों गतियों को इन जनरल बात कर रहे हैं। तो चौथे गुणस्थान तक ये बनती है, कौन से गति वाले को बनती है उसकी बात यहाँ नहीं उठाई अभी, वो तो बाद में उठाएंगे। परंतु समझने के लिए, हम मनुष्य है तो सम्यक तो होने पर कितने प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होगी, तो ये इन छह प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति मनुष्य और तिर्यंचों के लिए दूसरे गुणस्थान में हो जाएगी। वहां की 25 प्लस ये 6, ये वहीं पर गिनाएंगे कि दूसरे गुणस्थान में ही मनुष्य और तिर्यंचों को ये मनुष्यायु मनुष्य गति वगैरह वगैरह बंधेगी, उसके आगे नहीं बंधेगी, ख्याल आता है ना। परंतु यहाँ चारों गतियों में मिलाकर कथन है, इसलिए अभी चौथे गुणस्थान में बंध विच्छित्ति कितने प्रकृतियों की होती है, तो ये 10 प्रकृतियों की। कौन से अभी यहाँ उदय कौन सा है, अप्रत्याख्यानावरण है, आगे के भी है, उनका तो बंध भी चल रहा है, परंतु यहाँ रुकने वाले कौन से है, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्यायु, औदारिक औदारिक अंगोपांग और वज्र ऋषभ नारास सहन, ये जो 10 प्रकृतियां हैं उनकी बंध विच्छित्ति यहीं पर होगी चौथे गुणस्थान में, क्योंकि उसका बंध का कारण क्या है, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ। कोई एक का भी उदय होगा तो ये सब बंधेगी, ऐसा रूल है। कषाय का उदय एक ही होता है, या तो क्रोध होगा या मान या माया या लोभ, परंतु बंध तो चारों का होगा। जिसको अनंतानुबंधी क्रोध का उदय है मान लेते हैं, तो अनंतानुबंधी है ना, उसके साथ अप्रत्याख्यान भी है, प्रत्याख्यान भी है, संज्वलन भी है, यानी चारों प्रकार के क्रोध का उदय एक साथ होता है, और उसके बंधेंगे 4 × 4 = 16। अब आगे पढ़ते हैं। अब प्रत्याख्यानावरण की बात है, प्रत्याख्यानावरण ये क्रोध मान माया लोभ, इन चार प्रकृतियों के बंध का कारण इन्हीं का उदय है, क्योंकि अपने उदय के बिना इनका बंध नहीं पाया जाता। कषायों के बारे में और मिथ्यात्व के बारे में तो यही रूल है, जहां उनका उदय है वहीं पर उनका बंध है। इन नौ कषायों के बारे में ये रूल नहीं लगाना, वेदों के बारे में वहां थोड़ा अलग है, परंतु एक मिथ्यात्व और 16 कषायों के बारे में क्या रूल है, जहां उसका उदय है वहीं पर उनका बंध है। अब ये प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायलो 5वे के आगे उसका उदय नहीं है, तो उसका बंध भी 5वे तक ही है। तो 5वे गुणस्थान में कितने प्रकृतियों का बंध रुक जाएगा उसके अंत में, तो ये 4 का, क्योंकि इन चारों का बंध छठे आदि आगे के गुणस्थानों में नहीं पाया जाएगा। अब असाता वेदनीय अरति शोक अस्थिर अशुभ और अयशस कीर्ति, ये 6 गिनाए हमने, अलग ऑर्डर याद किए थे कि अस्थिर अशुभ असाता वेदनीय अयशस कीर्ति अरति और शोक, 5 तो अ अ वाले और 1 शोक है ना। इन 6 प्रकृतियों के बंध का कारण प्रमाद है, क्योंकि प्रमाद के बिना इन प्रकृतियों का बंध नहीं पाया जाता। तो प्रमाद कौन से गुणस्थान तक पाया जाता है, छठे तक, तो छठे तक इनका बंध होगा, आगे इनका बंध नहीं होगा। तो तो ये छठे गुणस्थान की बंध विच्छेद अगर याद करनी है तो हम कहेंगे इन प्रकृतियों का बंध विच्छेद वहां पर हो जाता है छठे में। यहां तक ख्याल में आए? ये प्रकृति भले याद न हो जावे उसकी कोई बात नहीं है, परंतु बंध विच्छेद किस आधार पर है वो तो ख्याल में आना चाहिए। शंका, प्रमाद किसे कहते हैं? उसका समाधान, चार संज्वलन कषाय यानी संज्वलन क्रोध मान माया लोभ और नौ नौ कषाय, इन 13 के तीव्र उदय का नाम प्रमाद है, क्योंकि सातवें से आगे उसका उदय है वो मंद हो जाता है, छठे तक वो तीव्र उदय है तो उसका नाम है प्रमाद। प्रमत्त गुणस्थान, उस गुणस्थान का नाम ही प्रमत्त गुणस्थान है। शंका, पूर्वोक्त चार बंध के कारणों में प्रमाद का कहां अंतर्भाव होता है? तो कहां होगा अभी बताए ना, चार संज्वलन कषाय है और नौ नौ कषाय है। देखो समाधान, कषायों में प्रमाद का अंतर्भाव होता है क्योंकि कषायों से पृथक प्रमाद नहीं पाया जाता। एक कषायों के संज्वलन और नौ नौ कषाय के तीव्र उदय को ही प्रमाद कहा है, इसलिए कषाय कहने पर वो बात आ जाती है। देखो स्पष्ट शब्दों में बता दिया ना यहाँ पर। देवायु का बंध का भी कषाय ही कारण है, क्योंकि प्रमाद के हेतुभूत कषाय के उदय के अभाव से अप्रमत्त होकर मंद कषाय के उदय रूप से परिणत हुए जीव के देवायु के बंध का विनाश पाया जाता है। क्या कहते हैं? यानी कषाय से ही देवायु का भी बंध होता है। तो उसमें कहते हैं प्रमाद के हेतुभूत कषाय के उदय। प्रमाद के हेतुभूत कौन से कषाय भी हमने देखे थे? संज्वलन चार और हास्यादि नौ नौ कषाय, उनके उदय के अभाव से। अभी उनका उदय का अभाव हो जाएगा या मंद उदय होगा तो क्या होगा? अप्रमत्त हो जाएगा, और अप्रमत्त होकर मंद कषाय के उदय रूप से परिणत होता हुआ जीव, तो वह जीव मंद कषाय रूप परिणत होगा। ऐसे जीव के देवायु के बंध का विनाश पाया जाता है। तो हमने तो देखा था सातवें गुणस्थान में देवायु का बंध है ना, और यहाँ तो लिखा है उसका बंध का विनाश पाया जाता है। उसका ऐसा रूल है जिसने छठे गुणस्थान में देवायु का बंध प्रारंभ किया है उस जीव का देवायु का बंध आगे सातवें तक चलता रहेगा, पर सातवें में वो नए देवायु का बंध करना प्रारंभ नहीं करना, आगे तो किसी भी आयु का बंध होता नहीं है। आठवें नौवें आदि गुणस्थानों में या सातिशय अप्रमत्त आदि में ये देवायु की तो बात क्या, क्योंकि हमने देखा नरकायु का बंध पहले में ही होता है, तिर्यंचायु का पहले दूसरे में होता है, और मनुष्यायु का चौथे महीने चौथे तक, यानी कौन कौन से गुणस्थान में होगा? तीसरे में नहीं होगा, पहला दूसरा और चौथा है, तीसरे में आयु का बंध ही नहीं होता, बराबर। हाँ, और देवायु का बंध पहला दूसरा भी तीसरे में कोई होता ही नहीं, चौथा पांचवा छठा, और छठे में जिसने शुरुआत किया उसका सातवें में भी चलता रहेगा। तो सातवें गुणस्थान में कहेंगे देवायु के बंध की विच्छित्ति होती है। अब संज्वलन कषाय का छठे में तीव्र उदय था, सातवें में मंद हुआ है, फिर भी बंध तो होगा क्योंकि संज्वलन कषाय भी है, तो संज्वलन कषाय का वहां बंध भी होगा। उसकी बात आएगी आगे, देखो। निद्रा और प्रचला, इन दो प्रकृतियों के, अभी ये जो बताए ना देवायु की बंध की बात, तो सातवें गुणस्थान में देवायु के बंध विच्छित्ति हो जाती है। अब आठवें गुणस्थान में किस किस की होगी वो बात अभी चलेगी। तो आठवें गुणस्थान में सात भाग कर देते हैं। पहले भाग में निद्रा प्रचला इन दो प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। छठे भाग यानी पहले भाग में बंध है, आगे नहीं है। छठे भाग तक और 30 प्रकृतियों का बंध है और उसके अंत में रुक जाता है। और फिर सातवें भाग में हास्यरति भयजुगुप्सा चार प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, उसकी बात अब बोलेंगे। देखो निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियों के भी बंध का कारण कषाय उदय ही है, क्योंकि अपूर्वकरण काल के प्रथम सप्तम भाग में, यानी सात भाग में से पहला भाग, उसको कहते हैं प्रथम सप्तम भाग, संज्वलन कषायों के उस काल के योग्य तीव्रोदय होने पर, क्या कहते हैं, संज्वलन कषाय का उस काल के योग्य तीव्रोदय, यानी आगे के भागों में वो मंद होता जाएगा, इसलिए उस काल के योग्य कहा, तीव्र उदय होने पर इन प्रकृतियों का बंध पाया जाता है। देखो ये जो निद्रा प्रचला आदि जो बातें हुई, ये कौन सी कर्म की प्रकृतियां हैं दीपेश भाई, आप जानते हो? हाँ, दर्शन, क्या दर्शन मोनी के नाम गिनाओ आप, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो अभी दर्शन नाम का कोई दूसरा कर्म होना चाहिए, उसका नाम क्या याद होता है? जैसे हमने ज्ञानावरण देखा वैसा दर्शनावरण। ये जो पांचों ही निद्रा है वो दर्शनावरण की है। तो पहले गुणस्थान में तो दर्शनावरण की नौ प्रकृतियां बनती थी, दूसरे गुणस्थान में भी नौ की नौ बनती थी। अब हमने वो स्थान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला अनंतानुबंधी के साथ बनती, ऐसा हमने देखा था। यानी उनकी बंध विच्छेदी दूसरे में हो गई, तो तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें और आठवें के पहले भाग तक दर्शनावरण हर समय बंद रहा है। कितनी प्रकृतियों का बंद हो रहा है? छह का हो रहा है। भले हम जागते हो या सोते हो, उनका बंद तो होता ही है। मिथ्यात्व अवस्था में जाग रहे हो या सो रहे हो, नौ के नौ का बंद होगा हर समय। उदय होगा नहीं होगा उसकी बात नहीं, हुआ निद्रा का उदय नहीं होने पर भी निद्रा का बंद हर समय हो रहा है, ख्याल है? ज्ञानावरण में भी ऐसे पांचों का बंध निरंतर होता रहेगा, कहां तक? दसवीं के अंत तक। अभी आठवें के पहले भाग तक निद्रा प्रचला और चार दर्शनावरण सबका बंद होता था, अब उनमें से ये दो निद्रा का बंद यहां रुक जाएगा, तो आगे दर्शनावरण की चार ही बंधेगी। उसके वो बंध स्थान में हमने देखा था, उसके अपना विषय यहां चला था ना। देखो यहाँ पाया जाता है। अब छठे भाग तक कौन से बंध पाया जाता है उसकी बात, अभी ये तीस प्रकृतियों के नाम गिनाएंगे यहाँ पर। हाँ, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, वैक्रेक, आहारक, तेजस और कारमान शरीर। या याद रखने के लिए वैक्रेक वैक्रेक अंगोपांग, आहारक आहारक अंगोपांग, तेजस कारमान, ऐसा भी याद रख सकते। समचतुरस्र संस्थान, देखो ये संस्थान यहाँ तक आया, देवगति और वैकिरेक शरीर आदि बन रहे हैं, तो उसके साथ ये संस्थान है, परंतु सहनन तो हमने चौथे में ही देखा था, वहां तक ही बनता है, जहाँ औदारिक शरीर का बंध है वहीं तक सहनन बनता है। वैकिरेक शरीर अंगोपांग, आहारक शरीर अंगोपांग, अब ये शरीर नाम कर्म बन रहा है, तो स्पर्श रसगंधक वो भी वहां तक ही बंधेगी, आगे नहीं बंधेगी। तो वर्ण गंध रस स्पर्श, देवगति प्रायज्ञानुपूर्वी, अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास, ये प्रशस्त विहाय गति यहां देखिए। अब ये त्रस बादर पर्याप्त और प्रत्येक शरीर, कॉमा देना यहां पर, ये बहुत सारी जो अप्रशस्त प्रकृतियां पहले चली गई थी ना, जैसे त्रस के बदले वहां स्थावर था, सूक्ष्म था, अपर्याप्त था, साधारण था वगैरह वगैरह, वो तो पहले गुणस्थान में चली गई थी। अब यहाँ पर ये प्रशस्त प्रकृतियां आठवें के छठे भाग में जा रही, तीस प्रकृतियां यहाँ पर चली जाएगी। ये स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थंकर, इन तीस प्रकृतियों के भी बंध का कषायोदय ही कारण है। तो यहाँ तक वो तीस बंधेगी, यहाँ के आगे नहीं। देखिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो चौथे से शुरू, पहले दूसरे तीसरे में तो होता नहीं है, तो चौथे वाले को पांचवे छठे सातवें आठवें तक हो सकता है, उसके आगे तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी रुक जाता है। उदय तो तेरहवें में होगा, हो परंतु बंद यहाँ तक है उसका। अभी अभी हमने आहारक आहारक अंगोपांग भी देखा, तो आहारक आहारक अंगोपांग का बंद होता है सातवें और आठवें गुणस्थान में, और उदय कहाँ होता है पता है आपको? छठे में होता है, उल्टा है, आगे बंद होता है और उसके नीचे के गुणस्थान में उदय होता है। उसका कारण बताते, क्योंकि अपूर्व करण काल के सात भागों में से प्रथम छह भागों के अंतिम समय में मंदतर कषायोदय के साथ इनका बंध पाया जाता है, यानी वहां तक इनका बंध है। नीचे के गुणस्थानों में तो बंध होगा ही होगा, हो उसकी लास्ट लिमिट बता रहे कहां तक है, तो आठवें के छठे भाग तक, उसके अंत तक। अभी सातवें भाग के अंत तक यानी अपूर्वकरण के अंतिम समय तक बंधने वाली कौन सी है? तो हास्य रति, भय और जुगुप्सा, इन चार के बंध अध प्रवृत्त, ये जरा अस्पष्ट हुआ है, प्रिंटिंग करेक्ट कर लेना, अध प्रवृत्त और अपूर्वकरण निमित्तक कषायोदय कारण है, क्योंकि उन्हीं दोनों परिणामों के काल संबंधी कषायोदय में ही इन प्रकृतियों का बंध पाया जाता है, यानी इन प्रकृतियों का बंध वहां तक ही है। अब हमने देखा ना, ये आठवां गुणस्थान समाप्त होते, अभी कितने मोहनीय का बंध बाकी है? थोड़ा हम हिसाब लगाएंगे, मोहिनी का हिसाब लगाएंगे, अभी तक जो आए ना हम सबका हिसाब लगाएंगे, क्योंकि नाम कर्म का हिसाब तो बहुत बड़ा है, अभी जिस हमको मालूम है उतना तो देखेंगे। देखो, मोहनी में मिथ्यात्व का बंध पहले में ही था, अनंतानुबंधी का बंध पहले दूसरे तक ही था, दूसरे के अंत तक। तीसरे में तो कोई बंध ही नहीं है मोहनीय का, यानी रुकना नहीं है, बंध तो है, बंध प्रत्याख्यान वगैरह, परंतु कोई बंध मिट नहीं जाता है। चौथे में कौन सा बंध मिट जाता है? हाँ, अप्रत्यय, मुख्य कषाय लिए है, वेदों की बात नहीं उठाई मैंने, अप्रत्याख्यान आवरण वहां पर है। हाँ, और फिर पांचवे में प्रत्याख्यान आवरण, और फिर संज्वलन अभी चल रहा है, अभी नौ कषायों की बात लेंगे। हाँ, छठे में अरति और शोक है ना, अब वेदों में लेना है तो पहले में नपुंसक वेद, दूसरे में स्त्री वेद लिया था, बंद की बात उदय नवे में जाता है, बंद की बात हमने ली, पहले में नपुंसक वेद का बंद रुक गया, दूसरे के अंत में स्त्री वेद का बंद रुक गया, छठवे में शोक और अरति, और अभी आठवें में हास्य रति भय जुगुप्सा है ना। अभी संज्वलन चार का बंध है, पुरुष वेद का बंध है ना, बाकी मोहनीय का चला गया है। अब नाम कर्म के हम अभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि आगे जरा हम यूज्ड हो जाएंगे ना उन नामों के साथ, तब फिर कभी दोहराएंगे, पूरा 148 का हिसाब लगाएंगे कौन सी कहाँ रुक जाती है। ये विषय मैंने कारंजा में लिया था, वहाँ महिलाएं बहुत उत्साही भी थी, पूरे 148 प्रकृतियाँ पूरे बोर्ड पर लिखकर कौन से का बंध कहाँ रुक जाता है और कौन कौन सा उदय कहाँ तक रुक जाता है, ये सारी बातें वहाँ ली थी। अब आगे पढ़ेंगे हम, ये 12वें पृष्ठ पर नीचे की दो लाइन, संज्वलन चार कषाय और पुरुष वेद इन पांच प्रकृतियों के बंध का बादर कषाय कारण है। देखो, अभी आठवें गुणस्थान तक की बात आ गई, अब नौवें गुणस्थान में जिसका बंध है और ऊपर नहीं है, ये चारों ही संज्वलन यहां लेना। सूक्ष्म लोभ का उदय दसवें में है, परंतु उससे मोहनीय नहीं बंधेगा, क्योंकि सूक्ष्म कषाय मोहनीय अपने ही बंध का कारण नहीं है। सूक्ष्म कषाय के उदय में ज्ञानावरण दर्शनावरण वगैरह बंद रहे, परंतु सूक्ष्म संज्वलन जो लोभ है उससे सूक्ष्म लोभ या अन्य कुछ भी नहीं बंधेगा, इसलिए नवे गुणस्थान में चार कषाय संज्वलन क्रोध मान माया लोभ और पुरुष वेद का बंध है, आगे नहीं है। तो तो यहाँ क्या कहते हैं, चार संजुलन कषाय और पुरुष वेद, इन पांच प्रकृतियों के बंध का बादर कषाय कारण है। तो बादर कषाय दसवें में तो सूक्ष्म कषाय हो जाती है, तो वहां उन्हीं को नहीं बांधेगी, क्योंकि सूक्ष्म कषाय के सद्भाव में इनका बंध नहीं पाया जाता। बंध नहीं पाया जाता ऐसा नहीं लिखा, इनका बंध नहीं होता, यानी संज्वलन का या वेद का बंध सूक्ष्म लोभ के कारण नहीं होगा। यानी ये नौवे गुणस्थान की बंध विच्छित हुई, समझिए। अब आगे पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय। देखो नौ में से तीन तो दूसरे तक ही बनती थी, और निद्रा प्रचला आठवें के पहले भाग तक बनती थी। अब दर्शनावरण की चार रह गई, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। वो चार दर्शनावरणीय यशस कीर्ति उच्च गोत्र पांच अंतराय, इन सोलह प्रकृतियों का सामान्य कषायोदय कारण है। वो सूक्ष्म है के बादर है ऐसी कोई बात नहीं, कषायोदय उसका कारण है, क्योंकि कषायों के अभाव में इन प्रकृतियों का बंध नहीं पाया जाता। तो इन प्रकृतियों का बंध कहां तक होगा, बोलो, दसवें के अंत तक। आगे कोई उपशम श्रेणी चढ़ने वाला है तो दसवें के अंत तक इनका बंध करेगा, ग्यारहवें में इनका बंध नहीं है, फिर लौट के दसवें में आते ही इन प्रकृतियों का बंध शुरू होगा। क्या ले? तो ये सांप्रायिक यानी कषाय के कारण बंधने वाले बंध ये सब यहाँ तक रुक जाएंगे, बाद में एकमात्र साता वेदनीय बचेगा। अभी हफ्ते का हमने हिसाब नहीं लगाया कितने हो गए, फिर भी सबके टोटल करेंगे तो एक साता वेदनीय बचेगा। क्या ले? तो कषाय के अभाव में उनका बंध नहीं होगा, यानी अभी ग्यारहवें बारहवें तेरहवें में इनका बंध नहीं पाया जाएगा। अब साता वेदनीय बंध का योग ही कारण है, क्योंकि मिथ्यात्व असंयम और कषाय इनका अभाव होने पर भी अकेले योग के साथ ही इस प्रकृति का बंध पाया जाता है, और अयोग के अभाव में, उन्होंने पहले देखा ना, जिसके सद्भाव में बंध हो और जिसके अभाव में उसका बंध भी नहीं हो अन्वय और व्यतिरेक से, तो योग के अभाव में इस प्रकृति का बंध नहीं पाया जाता, और इनके अतिरिक्त अन्य कोई बंध योग्य प्रकृतियां नहीं है। अभी सारे हमने इतने सारे हिसाब लगाया तो अन्य कोई नहीं। देखो पहले गुणस्थान में हमने कितने देखे थे, या मिथ्यात्व संबंधी, थोड़ा हिसाब लगाएंगे ना, कोई अपनी कर्म प्रकृति रह नहीं जाए, नहीं तो उसको साथ में ले जाना पड़ेगा मोक्ष में। पहले में 16, दूसरे में 25, तीसरे में 0, चौथे में 10, पांचवे में 4, छठे में 6, सातवें में 1 देवायु, आठवें में 2 प्लस 30 प्लस 4 36, नौवे में 5, एक वेद और 4 कषाय, दसवें में 16 ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय, 14 हुए यशस कीर्ति और उच्च गोत्र, ये 16। ग्यारहवें बारहवें में बंध विच्छित नहीं है तो ये 0-0, और तेरहवा में 1, बराबर। ये टोटल कितनी होती है, 6, 7, 5, 12, 8, 19, 5, 34, 6, 40, 4, 1, 5, 3, 8, 1, 9, 9, 3, 12, 120 हो गई। 120, ये 148 में स्पर्श रस गंध वर्ण की 20 के बदले हम 4 ही को लेते तो 16 वो कम होती है। और शरीर बंधन और शरीर नाम कर्म बंधन और संघात 5, 5, 5 है, उसके बदले में शरीर में ही सब इंक्लूड कर देते हैं तो 10 वो कम हो गई, तो 26 कम हो गई। 148 में से 26 चली गई तो 122 प्रकृतियां है टोटल, उसमें से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ये बंध योग्य नहीं है, तो बंध योग्य प्रकृति 120 ही है। अब उसका कहां बंध होता है, कहां तक और कहां छूट जाता है, उसकी ये टोटल है। 120 का हिसाब लगाया, हम इतना तो अभी तो याद रख सकते हैं इतना, पहले की 36, 16, 25, 0, 10, 4 है ना, 6, 1 फिर 36 और फिर 5 फिर 16 फिर 0, 0 और 1 तो ये बंद विच्छित्ति इसको ही बतला था। आपको लिखना है तो लिख लो। अब आगे हम पढ़ते हैं शंका। असंयम भी बंध का कारण कहा गया है, सो वह किन प्रकृतियों के बंध का कारण है, उसका समाधान। यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि संयम के घातक कषाय रूप चारित्र मुनि कर्म के उदय का ही नाम असंयम है। असंयम से कोई अलग कर्म बनते हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि असंयम चौथे तक है, पांचवे में संयम असंयम है और छठे से संयम है, तो उसमें यथा योग्य जिन मोनिय का उदय है उसका वहां बंध होगा। जो अभी हमने पहले से जो गिनाए हैं, जहां जिसका मिथ्यात्व का उदय है या कोई कोई विशिष्ट कषाय का उदय है, वहां उसका उसका बंध भी है। शंका, यदि असंयम कषायों में ही अंतर्भूत होता है, फिर उसका पृथक उपदेश किस लिए किया जाता है? तो ये बंध के कारणों में उसको मिथ्यात्व असंयम ऐसे अलग क्यों गिनाया है? उसका समाधान करते हैं, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि व्यवहार नय की अपेक्षा से उसका पृथक उपदेश दिया गया है। समझाने से, उसका विस्तार करके समझाने के लिए उसको अलग से बताया। बंध कारणों की यह प्ररूपना पर्यायार्थिक नय का आश्रय करके की गई है, पर द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करने पर तो बंध का कारण केवल एक ही है, क्योंकि कषाय चतुष्क के समूह से ही बंध रूप कार्य उत्पन्न होता है। सॉरी, कषाय चतुष्क नहीं, कारण चतुष्क, मुझे समझ में है। देखो फिर मैं पढ़ती हूँ, मैंने कुछ गलती की पढ़ने में। देखो, द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करके बंध का कारण एक ही है। एक कौन सा? वो समूह रूप कारण एक गिनेंगे, भेद करेंगे तो चार हो गए। बंध के कारण कौन से है? मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, चार कहना है तो चार हो गए। अब बंध के कारण कौन है? कारण चतुष्क का समूह, समूह करके हमने उसको एक गिनाया, तो ये द्रव्य भेद करते तो व्यवहार हो गया है ना, पर्यायार्थिक नहीं हो गया। जहां भेद किया तो पर्यायार्थिक नहीं, अभेद करके समूह रूप कह दिया तो द्रव्यार्थिक नहीं। इसको मैं फिर पढ़ती हूँ। द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करने पर तो बंध का कारण केवल एक ही है, क्योंकि कारण चतुष्क के समूह से ही बंध रूप कार्य उत्पन्न होता है। एक कथन में भेद है, ऐसे कुछ समझने में कोई नहीं है। अभी अपना विषय चल रहा है ना प्रवचन सार में, संयम में, वो सामायिक संयम, या एक ही कहो तो एक ही महाव्रत है, कौन सी अंतरंग में लीनता, और उसी को भेद करके समझा तो पांच महाव्रत है। या मूल गुण 28 है, वो भेद करके समझाओ तो 28 है, और अभेद से कहूंगा तो परम सामायिक एकमात्र है मूल गुण, तो उसी को वहां छेद और सामायिक ऐसा उपस्थापना ऐसा कहा था उसमें। इस कारण, अभी यहां अपने पुस्तक में आते, ये ही बंध के कारण है। इनके प्रतिपक्षी सम्यक्तोत्पत्ति, देश संयम, संयम अनंतानुबंधी विसंयोजन, दर्शन मोहक क्षपण, चारित्र मोहोपशमन कौमा कौमा देना, उपशांत कषाय, चारित्र मोह क्षपण, क्षीण कषाय और सहयोगी केवली, ये परिणाम मोक्ष के कारणभूत है। ये परिणाम लिया वहां के जीव, ये गुणस्थान मोक्ष का कारण है, वे परिणाम मोक्ष के कारणभूत है। क्योंकि अब ये जो लिस्ट लंबी चौड़ी दी है, इसे कोई फैमिलियर लगती है? कहीं सुना था ये इस लिस्ट को? हाँ, कौन से ग्रंथ में पढ़ा था? देखो देखो, फिर हम उसको नाम देते, नंबर देते। स सम्यक्तोत्पत्ति देश संयम दो संयम तीन अनंतानुबंधी विसंयोजन चार पांचवा है दर्शन मोह क्षपण छठा है चारित्र मोह उपशमन सातवा है उपशांत कषाय आठवा चारित्र मोह क्षपण नौवा क्षीण कषाय और दसवा संयोग केवली। एक हाँ ये नाम कहीं सुने थे आपने? हाँ हाँ असंख्यात गुणी निर्जरा तत्वार सूत्र में ये सूत्र है, वहां भी ऐसा है ना, वहां दर्शन मुनि उपशमन ऐसा ही वो लिया है सम्यक्तोत्पत्ति के बदले। देखो ये क्या है, उसमें असंख्यात गुणा निर्जरा होती है, सम्यक्तोत्पत्ति के काल में शुरुआत होती है निर्जरा की, उसमें जितनी निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा देश संयम में, उससे असंख्यात गुणी संयम में और उससे असंख्यात गुणी अनंतानुबंधी के विसंयोजन में, भले वो विसंयोजन चौथे गुणस्थान वाला ही क्यों न करे, क्योंकि हमने देखा था अनंतानुबंधी का विसंयोजन होते समय फिर दोबारा तीन करण परिणाम होते हैं, तो यहाँ और ज्यादा निर्जरा है। दर्शन मुख की क्षपणा करने वाला भले वो चौथे पांचवें छठे सातवें गुणस्थान वर्ती हो, वहां उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा है। उससे चारित्र मोह का उपशमन करने वाला उपशम श्रेणी चढ़ने वाला उससे ज्यादा उपशांत कषाय गुणस्थान में और ग्यारहवें में, उससे ज्यादा चारित्र मोह की क्षपणा करने वाला वो फिर आठवें नौवें दसवें वाला, उससे बारहवें वाला क्षीण कषाय और उससे सहयोगी केवली और उससे भी केवली समुद्धात। ये तो सहयोगी केवली सामान्य की बात की, केवली समुद्धात वाले के असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अब ये जो परिणाम है वहां के जीवों के, वे मोक्ष के कारणभूत है, क्योंकि इनके निमित्त से कितने काल में होती है असंख्यात गुणा निर्जरा? अश्विन भाई कितने काल में असंख्यात गुणा निर्जरा होगी? ये जो 11 स्थान देखे अंतर्मूर्त में होगी ना, प्रति समय ये अख्यासन तो हुए असंख्यात करना इसको, प्रति समय के अर्थ क्या होता है, पहले समय में है उससे दूसरे समय में असंख्यात, तीसरे समय में असंख्यात, क्योंकि ये सारे अंतर्मूर्त वाले काल है ना सारे, तो इनके जो जितना अंतर्मूर्त काल है असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात, और वो पांचवे से छठे वाले की उससे भी असंख्यात गुणा, छठे वाले से वो अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाले उससे भी असंख्यात गुणा, इस तरह से समझना। इनके निमित्त से प्रति समय असंख्यात गुणश्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा पाई जाती है, किंतु जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व आदि जो पारिणामिक भाव है, पहले शंकाकार ने पूछा था ना वो पारिणामिक भाव संबंधी, वे बंध और मोक्ष दोनों में से किसी के भी कारण नहीं है। तो अभव्य जीवों को ज्यादा बंध होता होगा ना, वो बंध का कारण नहीं है अभव्यत्व हो, क्योंकि ये सारे पारिणामिक भाव है, बंध और मोक्ष दोनों में से किसी के भी कारण नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा बंध या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इस कर्म के क्षय से सिद्धों के यह गुण उत्पन्न हुआ है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए ये गाथाएं यहाँ प्ररूपित की जाती है। आठ कर्मों के कौन से कर्म के क्षय से सिद्धों का कौन सा गुण प्रकट होता है उसको बताने के लिए ये गाथाएं हैं। हमें तो ये जनरल तो मालूम ही है, आठ गुण कहे जाते हैं, आठ कर्मों के क्षय में उन आठ गुणों की उत्पत्ति बताई जाती है। अब यह हम गाथा में पढ़ेंगे। दौव गुण पजहे जे जस्सु दयेन यण जान दे जीवो तस्सखेन सोचिय जान दि सौवम तयम जुगवम। जिस ये चौथा नंबर का पढ़ रहे, जिस ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से जस्सु दयेन जीव जिन द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों को नहीं देखता है क्या? ज्ञानावरण कर्म के उदय से द्रव्य गुण पर्याय को नहीं देखता है, नहीं जानता। ज्ञानावरण का उदय का कार्य क्या है? ज्ञान नहीं होना है ना। नहीं नहीं, ये क्या है? हाँ, ज्ञानावरण चाहिए।
देखने लगता है,
जान दी, जानने लगता है। देखो इसमें जरा करेक्शन करना, क्योंकि ये नीचे का ही उन्होंने ऊपर छाप दिया है। हम ऐसा पढ़ेंगे, जिन ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जीव जिन द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों को नहीं जानता है, ऊपर लिखा ना, यह न जान दे, और दूसरे आगे की गाथा में यह न पस्स दे। जहाँ पस्स दे लिखा है वहां तो देखता है करेंगे आगे की गाथा में। यहाँ जो नहीं जानता, ऐसा तीनों को नहीं जानता है, ये ऊपर और नीचे में जरा घोटाला हो गया उनका। उसी ज्ञानावरणीय करना भी, दर्शन निकाल के ज्ञान लिखना, उसी ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से वही जीव उन सभी तीनों को एक साथ जानने लगता है। यहां भी देखने के बदले जानने करना। और लगाता हुआ है वो लगता करना। क्या है वो डीटीपी? या पहले तो सारा वो कंपोजिंग चलता था खिले से, तो ऊपर नीचे का हो जाता है घोटाला कुछ। देखो इसको अभी मैं कंप्यूटर में तो और घोटाले होते हैं, यहाँ देखते और यहाँ करते रहते हैं ना। एक लाइन छूट गई, वो जानने लगता है, देखने लगता है, ऐसा एक सा ही लगता है, तो वो भी बीच में कितने ही सेंटेंस चले जाते हैं। अभी मैं इसको फिर पढ़ती हूँ इस अर्थ को। जिस ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से जीव जिन द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों को नहीं जानता है, उसी ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से वही जीव उन सभी तीनों को एक साथ जानने लगता है। ये ज्ञानावरणी कर्म से अनंत ज्ञान उत्पन्न होता है, केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, उसकी बात है। अब दर्शनावरण की बात करेंगे, पहले हम गाथा पढ़ते हैं। दौव गुण पजये जे जसुदयेन यण पस्सदे जीवो तस्सखयेन सोच्य पस्सदि सौवं तयम् जुगमम्। जिस दर्शनावरणीय कर्म के उदय से जीव जिन द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों को देखता है, इन तीनों को नहीं देखता है, नहीं रह गया, मैं भी ऐसी पड़ गई हाँ। उसी दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से वही जीव उन्हीं सभी करना सभो हुआ है सभी उन सभी तीनों को एक साथ देखने लगता है। देखो यहाँ कहीं दर्शन में ऐसा नहीं लिखना, अपने कोई देखता है वो दर्शन है और पर को जानता है वो ज्ञान है, ऐसा नहीं लिखा है ना। सामान्य से भेद किए बिना जानना या ग्रहण करना उसको दर्शन कहा है। अब वेदनी की बात करेंगे, वो आगे की लाइन में यह शब्द नहीं आए, वो डाल के रखना है। अब आगे 6 नंबर की, जसोदयेन जीवो सुहं व दुःखं व दुव्यमणुह वही तस्सोदयखयेन दु जायदि अपत्थणन्त सुहो। जिस वेदनीय कर्म के करना उदय से जीव सुख और दुख इस दो प्रकार की अवस्था का अनुभव करता है। ये सुख है ना, ये संसार जिसमें उसने सुख मान रखा है, उस सुख की बात है, अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है। हाँ, उस कर्म के उदय के क्षय से आत्मोत्थ, ये महत्व की बात है, आत्मा से उत्पन्न हुआ ऐसे अनंत सुख उत्पन्न होता है। पहले तो पर पदार्थों में से सुख या दुख आता है, इस जीव ने मान भी रखा था, है ना, और उस सुख दुख का अनुभव भी चलता रहता था उसको। और अब ये आत्मोत्थ यानी अतीन्द्रिय आनंद की बात है। ऊपर लिखा था अपथ अनंत सुहो, अपथ ने अपाय ने आत्मा, आत्मोत्थ आत्मा से जो उत्पन्न हुआ है ऐसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। यानी अभी तक हमने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख की बात देखी, वेदनीय को पहले लिया उसमें अनंत सुख में। अब 7 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। मिच्छत्त कसाया संजमे ही जसोदयेन परिणमय जीवो तस्सेव खया तव्यवरी दे गुणे लहई। जिस मोहनीय कर्म के उदय से जीव मिथ्यात्व कषाय और असंयम रूप से परिणमन करता है, ऊपर लिखा ना मिच्छत्त कषाय असंयम, जिसके उदय से परिणमित होता है, उसी मोहनीय के क्षय से इनके विपरीत गुणों को प्राप्त करता है। विपरीत गुण यानी मिथ्यात्व का विपरीत है सम्यक्त्व, कषाय असंयम आदि के विपरीत है वो वितरागता, चारित्र, चारित्र की प्राप्ति है। अनंत सुखों को हमने इसमें लिया, वेदनीय में ले लिया। अव्याबाधत्व है ना उसमें, अव्याबाध अनंत सुख ऐसा उसमें आता है। अब आयु की बात करते जसोदयेन जीवो अनुसमयम मरदि जीवति वराहो तस्सोदय खयेन दु भव मरण विवज्यो होई। जिस आयु कर्म के उदय से बेचारा जीव, ऊपर क्या लिखा उसके वराओ, वरा का शब्द आया है ना बेचारा, स्वामी जी बोलते उनके वरा का, संस्कृत में वरा कहा कहते हैं, बिचारो जीव प्रति समय मरता और जीता है, उसी कर्म के उदय क्षय से वह जीव जन्म और मरण से रहित हो जाता है। अब नाम कर्म के उदय की बात है। अंगो वंग सर इंद्रिय मनुष्यास जो गणिपति जसोदयेन सिद्धो तन्नाम खयेन अशरीरो। जिस नाम कर्म के उदय से अंगोपांग शरीर इंद्रिय मन और उच्छ्वास से योग्य के चाहिए उच्छ्वास के योग्य निष्पत्ति होती है, उसी नाम कर्म के क्षय से सिद्ध अशरीरी होते हैं। यानी शरीर संबंधी जो कुछ रचनाएं हैं वो नाम कर्म से उत्पन्न होती थी। शरीर है, अंगोपांग है, वो संसार भी हमने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट देखी थी, स्पर्श है, रस, गंध, वर्ण, जो कुछ है शरीर संबंधी, आतप, उद्योत वगैरह। अब यहाँ तो उच्छ्वास को भी लिया है, मन को भी लिया, सबको लिया, तो नाम कर्म का अभाव हो जाता है, क्षय हो जाता है, तो सिद्ध अशरीरी हो जाते हैं। गोत्र की बात अब करेंगे 10वें में। उच्चुच्च उच्चतः उच्चणी चणिच्चुच्चणी चणीचम जसोदयेन भावो नीचुच्च वियज्जिदो तस्स। नीच और उच्च ऐसा अगुरु लघु, बड़ा छोटा नहीं होगा। जिस गोत्र कर्म के उदय से जीव उच्चोच्च उच्च नीच नीचोच्च नीच या नीच नीच भाव को प्राप्त होता है, उसी गोत्र कर्म के क्षय से वह जीव नीच और ऊंच भावों से मुक्त होता है। इसको हम अगुरु लघुत्व प्रकट होता है ऐसा हमने देखा था। अब अंतराय की बात 11वें में बताते। विरियो व भोग भोगे दाणे लाभे जदुदयद विघ्नम पंचविहलद्विजुतो तक्कम खया हवे सिद्धा। जिस अंतराय कर्म के उदय से जीव के वीर्य उपभोग भोग दान और लाभ में, हम कहते हैं दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, तो उसमें विघ्न उत्पन्न होता है, उसी कर्म के क्षय से सिद्ध पंचविध लब्धि से संयुक्त होते हैं। ये जो पांच प्रकार बताए हैं कौन से, वीर्य उपभोग भोग दान और लाभ, तो इसके तो हमारे आपके सबके क्षयोपशम पाया जाता है। अब जब इन अंतराय का क्षय हो जाता है तो क्षायिक ये पांच प्रकट होते, क्षायिक वीर्य, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग उपभोग वगैरह, तो ये पांच लब्धि। वो क्षोभम के पहले पांच लब्धि होती उसकी बात नहीं है, ख्याल है ना, इनको भी लब्धि कहते हैं। अरिहंत भगवान के नौ क्षायिक लब्धि प्राप्त होती है अरिहंत को, कौन सी कौन सी, पांच तो ये हो जाती है, ये क्षायिक लब्धि यानी क्षय से होगी, तो अरिहंतों को चार घाती कर्मों का क्षय है, तो उसमें ये पांच, ये नौ क्षायिक लब्धि प्रकट हो जाती है, कौन कौन सी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, ये तो हम तो अनंत चतुष्टय कहते हैं, तो ये वीर्य के साथ ये पांच लेना है, तो उसमें क्षायिक सम्यक, क्षायिक लब्धि है ना, क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र लेना, क्षायिक शब्द लगाना है, क्षायिक लब्धि कहना है ना, तो क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक, क्षायिक चारित्र, फिर क्षायिक ये पांच, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये वाले क्षायिक। तो वहां सिद्ध भगवान किसको दान देते होंगे, हाँ हाँ अपने आत्मा को, काहे का ज्ञान दान देना है, अभी अतीन्द्रिय आनंद का भोग करते हैं, उसी का उपभोग भी करते हैं और उसी का लाभ है उनके, उसी को अपने आप को ही दान देते हैं, किसी परत जीव को दान देने की बात नहीं है, नहीं तो पहले वो कौन लेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा ना वो भले देंगे तो हम कहेंगे नहीं हमें संसारी प्यारा लगता है आपका, हमको नहीं चाहिए वो चोकशाही का आनंद वगैरह जो कुछ है तो ये पंचविध लब्धि है नी, ये दानादि जो है या वीर्यादि कहो इसको, ये पांच लब्धि कहते इसको, और ये सारे मिलकर नौ लब्धि कहलाते, ये स्तुति में आता है ना, नवलब्धि केवल नवलब्धि रमा धरंत, अरिहंत का वर्णन है उसमें, नव केवल लब्धि। अब 12 नंबर का, जय मंगल भूदानम विमलानम नानदम सनमयानम ते लोक से हराणम नमो सया सौवसिद्धानम। जो जग में मंगल भूत है, विमल है, ज्ञान दर्शन में है और त्रैलोक्य के शेखर रूप है, तेलोक सेहराणम, सेहरा यानी उसका शिखर या मुकुट भी कहते हैं, ऐसे समस्त सिद्धों को मेरा सदा नमस्कार है। ये लोकाग्र में निवास करते हैं सिद्ध भगवान, तो जाने के वो त्रिलोक के मुकुट है या शिखर रूप है, उनको मेरा नमस्कार हो, अनंत सिद्ध भगवान को, त्रैलोक्य के शेखर रूप, सेहर शिखर, नहीं उनका कहना है शिखर करना का शेखर करना, शेखर ठीक है, सेहर लिखा है ना, सेहरा
शिखर यानी सबसे ऊंची बात होती है ना, पर्वत होगा उसके ऊपर का वो पोर्शन है उसको शिखर कहते हैं,
शिखर यानी मुकुट, मुकुट सेहरा। अब हम आठवें सूत्र की बात करेंगे, पहले गति मार्गणा के अनुसार हमने देखा था कि देवगति वाले जीव भी बंधक है, तिर्यंच गति वाले बंधक है, नारकी वाले बंधक है, और मनुष्य में बंधक भी है और अबंधक भी है। अब यहां बात करेंगे इंद्रिय मार्गणा के अनुसार, अभी इंद्रिय मार्गणा के अनुसार कितने भेद है पहले उसको हम देखेंगे, हाँ, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चतुर इंद्रिय जीव और पंचेंद्रिय जीव। अब यहाँ कहते हैं इंद्रियाणुवादेन ए इंद्रिया बंधा बी इंद्रिया बंधा ती इंद्रिया बंधा चतुर इंद्रिया बंधा। चतुर इंद्रिय तक तो बंधक ही कहे, अब पंचेंद्रिय में जो यथायोग्य वो कहेंगे बाद में। इंद्रिय मार्गणा के अनुसार एकेंद्रिय जीव बंधक है, द्विंद्रिय जीव बंधक है, तीन्द्रिय जीव बंधक है और चतुरिंद्रिय जीव बंधक है, क्योंकि उक्त जीवों में कर्म बंधक के कारणभूत मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग इनके अन्वय को छोड़कर व्यतिरेक का अभाव है। क्या कहते हैं? व्यतिरेक का अभाव है, अन्वय ने अस्ति और व्यतिरेक ने नास्ति। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय में मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग ये चारों ही कारणों की अस्ति है, इनका नास्ति होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये सारे ही मिथ्यादृष्टि जीव है। यानी चारों ही कारणों की वहाँ अस्ति है, नास्ति नहीं, यानी अभाव नहीं है, क्योंकि हम कहते ना उसके होने पर बंद है और नहीं होने पर बंद नहीं है, यहाँ उनका नहीं होने का सवाल ही नहीं है। पंचेंद्रिय में हो सकता है किसी का मिथ्यात्व चला गया, किसी का असंयम चला गया, किसी का कषाय चला गया है ना, योग भी चला जाए, पंचेंद्रियों में तो पॉसिबिलिटी है। चतुरिंद्रिय तक में तो चारों ही कारण विद्यमान है, अर्थात उन जीवों में बंधक के कारणों का सद्भाव ही पाया जाता है, असद्भाव नहीं। तो जहाँ कारण पाए जाते हैं वहाँ सभी प्रकार का बंध भी वहाँ होगा। अब पंचेंद्रियों की बात करते हैं। पंचेंद्रिया बंधा भी अति अबंधा भी अति, क्योंकि अभी हमारे केवल क्राइटेरिया वो पंचेंद्रिय इतना ही है, वो देव वाले मनुष्य को वो बात हम यहाँ नहीं देख रहे, वो हमने गति में देखी। अब पंचेंद्रिय इन जनरल वो चारों ही गति के पंचेंद्रिय है, परंतु जब हमने सामान्य से बात की तो पंचेंद्रिय जाके 13वें 14वें गुणस्थान में जाने वाले और उन्हीं का क्रम से सम्यक्त्व आदि प्राप्त करके जाएंगे, तो मनुष्य पंचेंद्रिय, अभी यहाँ मनुष्य के कौन है उसकी बात नहीं, पंचेंद्रिय जीवों में बंध है कि नहीं है, तो किन्हीं में तो है, किसी में तो नहीं है। पंचेंद्रिय जो बंधक भी है अबंधक भी है, क्योंकि मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से लेकर सहयोगी केवल तक के जीव तो बंधक ही है, सहयोगी तक के वो कौन कौन सा बंध होता है उसकी बात नहीं, बंध है कि नहीं उतनी ही बात है, क्योंकि उनमें बंध के कारणभूत मिथ्यात्वादी पाए जाते हैं, किंतु अयोगी केवली अबंधक ही है। अयोगी हुआ है वो अयोगी करना, क्योंकि उनमें मिथ्यात्व आदि सभी बंध के कारणों का अभाव है, यानी पूर्ण रूप से संवर है वहां। इसलिए पंचेंद्रिय जीव बंधक भी है अबंधक भी है ऐसा कहा गया है। शंका, जिन्होंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन से समस्त प्रमेय, प्रमेय ने गेय, समस्त प्रमेय अर्थात गेय पदार्थों को देख लिया है, और जो करण अर्थात इंद्रियों के व्यापार से रहित है, इंद्रियों को करण कहते हैं, तो इंद्रियों के द्वारा वे जानने का कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान है उनका, पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान है ना। तो ऐसे सहयोगी और अयोगी केवलियों को पंचेंद्रिय कैसे कह सकते हैं? प्रश्न क्या है, सहयोगी केवलियों को पंचेंद्रिय क्यों कहते हो? तो उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि उनमें पंचेंद्रिय नाम कर्म का उदय विद्यमान है, अतः उसकी अपेक्षा से उन्हें पंचेंद्रिय कहा गया है। अभी इंद्रिया मार्गणा चल रही है, जब संगी मार्गणा आएगी तब क्या कहेंगे उनको? ये अपना दूसरे पुस्तक में हुआ है, हाँ, संगी असंगी से रहित कहेंगे वहां पर। संगी यानी मन का कार्य वहां रुक गया है, तो वहां तो उनको संगी असंगी से रहित, असंगी नहीं कहेंगे, संगी असंगी से पार हुए हैं ऐसा कहेंगे वहां। अब इंद्रिय मार्गणा में जीव समास कौन सा है उनका? तो कहेंगे वो संगी पंचेंद्रिय, जीव समास में उनको संगी पंचेंद्रिय कहेंगे। पहले हम टेबल लगाते थे दूसरी पुस्तक में, उसमें जीव समास बताया जाता था, तो जीव समास में उनको संगी पंचेंद्रिय कहेंगे, और संगी मार्गणा में उनको संगी असंगी से रहित कहेंगे। अब यहाँ इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा उनको पंचेंद्रिय कह रहे हैं। अभी जब हम काय की बात करेंगे ना, तो काय में तो षटकाय लगते हैं, स्थावर काय और त्रस्काय, तो उसमें तो उनको क्या कहेंगे, अरिहंतों को त्रस्काय कहेंगे। तो अरिहंतों को त्रस कहने में भी किसी किसी को डर लगता है, क्योंकि त्रस हमने कीड़े मकोड़े को ही त्रस समझ रखा है। अब इनके तो पंचेंद्रिय नाम कर्म का उदय पाया जाता है, इसलिए उनको भी ये पंचेंद्रिय कहा गया। अब कहते अनिंद्रिया अबंधा, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा यह न केवल संसारी मुक्तों को भी इसमें ले लिया, तो मुक्त जीव जो सिद्ध है वो अनिंद्रिय है। संसारी जीव तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक पाए जाते हैं, और सिद्ध है वे अनिंद्रिय है, तो वो अबंध होते हैं। अनिंद्रिय जीव अबंधक है, क्योंकि निरंजन सिद्धों में समस्त बंध का अभाव है। निरंजन अंजन से रहित, अंजन ने कोई भी दोष नहीं है, कोई दाग नहीं उन्हें, हाँ मलिनता नहीं है, उनके समस्त बंध का अभाव है। चूंकि निरामय अर्थात निर्विकार जीवों में बंध का कोई कारण नहीं रहता, विकार को ही आम निरामय का अर्थ होता है, रोग से रहित को भी निरामय कहते हैं, हाँ? और यहाँ तो निर्विकार के लिए निरामय का, निर्विकार निरामय निरंजन ये सिद्धों के विशेषण है। ये तो इंद्रिय मार्गणा की बात हो गई, ये आसान है ना, बहुत ही आसान है। ये धौला का नाम सुनते लोगों को डर लगता है, अरे हमको समझेगा कि नहीं समझेगा, ये बहुत आसान बात है। ये तो मार्गणा की बात एक बार हुई, अभी नहीं भी जिसने सुनी है उसको भी, ये तो गति की अपेक्षा चार गति होती है और इंद्रियों की अपेक्षा पांच भेद होते हैं, ये तो आसान है ना। अब काय मार्गणा की अपेक्षा बात करेंगे, कायानुवादे न, देखो यहाँ ये काय मार्गणा में औदारिक काय वैकृत काय उसकी बात नहीं है, यहाँ तो पांच स्थावर काय, यानी अभी जो काय वाले जो सारे हैं तो पांचों ही स्थावर काय, एक इंद्रिय को अभी पांच भेद हो गए, तो पांच स्थावर काय अलग अलग बताएंगे, और द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सारे ही एक त्रस काय में आ जाएंगे। तो कायाणु आदे न, पुढ़वी काया बंधा, आहु काया बंधा, तेहु काया बंधा, वाहु काया बंधा, वनपदी काया बंधा। अब त्रस जीवों को छोड़कर पांचों ही स्थावरों को यहाँ लिया है, तो उसमें तो चारों ही बंध के कारण पाए जाते हैं ना, एक इंद्रिय जीव है। फिर त्रसों में भेद करेंगे, कुछ बंध वाले कुछ अबंध वाले। काय मार्गणानुसार पृथ्वी कायिक जीव बंधक है, अप कायिक करना क हुआ है, अप कायिक जीव बंधक है, तेजस कायिक जीव बंधक है, वायु कायिक जीव बंधक है, और वनस्पति कायिक जीव बंधक है। अभी अन्यमति तो ये जीव है इतना भी नहीं मानते, तो वो बंधक है, कषाय करते हैं, मिथ्यात्व तो अविरति सब है उनमें, ये कौन जानेगा। यह सूत्र सुगम है। अब त्रसों की बात करेंगे, क्योंकि काय मार्गणा में छह भेद है, पांच स्थावर कायिक जो है अलग अलग पृथ्वी अग्नि वगैरह वगैरह, और एक त्रस्काय, त्रस्काय का पूरा ही ग्रुप एक में ले लिया जाएगा। तसकाया बंधावी अथि अबंधावी अथि, वो अथि बराबर करना। वी एने भी, त्रस्काय जीव बंधक भी है अबंधक भी है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर संयोगी केवली तक के त्रस्काय जीवों में बंध के कारणभूत मिथ्यात्वादी पाए जाते हैं, किंतु अयोगी केवली में, क्योंकि अयोगी केवली भी त्रस है। त्रस क्यों कहना, त्रस नाम कर्म का उदय है। वे बंध के कारण नहीं पाए जाते। अब ये तो षटकाय तो हो गए, अभी सिद्धों को कहेंगे वो अकायिक है। तो अकाया अबंधा, अकायिक जीव अबंधक है, यह सूत्र सुगम है। अब योग मार्गणा की अपेक्षा से भेद करेंगे। तो योग मार्गणा में तो मनोयोगी है, वचन योगी है, काय योगी। तो अभी जिनके जिनके योग है, भले कोई भी हो, तो उनको बंध होगा कि नहीं होगा, है ना? योग बंध का कारण है, तो खाली अयोगी अबंध अबंधक है कहेंगे, ख्याल है ना? तो जोगाणु आ देना, मनोजोगी वची जोगी काय जोगिणो बंधा। योग मार्गणानुसार मनोयोगी वचन योगी और काय योगी बंधक है, यह सूत्र भी सुगम है। अजोगी अबंधा, अयोगी जीव अबंधक है। अभी अयोगी में चौदहवें गुणस्थान को भी लेना और सिद्धों को भी लेना, वे बंधक वाले नहीं है। फिर शंका, योग किसे कहते हैं? उसका समाधान, मन वचन और काय संबंधी पुद्गलों के आलंबन से जो जीव प्रदेशों का परिस्पंदन होता है वही योग है। क्या कहते हैं? मन संबंधी पुद्गल स्कंद, भाषा संबंधी यानी भाषा वर्गणा के पुद्गल स्कंद, और काया संबंधी यानी जो कोई औदारिक वैकरिक आदि परमाणु हो गए, उन परमाणुओं को आलंबन लेता है जीव स्वयं, तो उसके परिस्पंदन होता है। तो क्या सिद्धों के आजू बाजू में ये परमाणु नहीं है? है, तो वे आलंबन क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो भाव योग नहीं है उसमें। जिस आत्मा में ये भाव योग है उसके ये इनके अवलंबन से द्रव्य योग यानी परिस्पंदन उत्पन्न होता है। वो शक्ति जो है, वो पुराना जो नाम कर्म है ना, शरीर नाम कर्म, उसके उदय में भाव योग उत्पन्न होता है, और ऐसा जीव इनका अवलंबन लेता है तो उसको परिस्पंदन यानी द्रव्य योग उत्पन्न होता है। ये द्रव्य योग कुछ पुद्गल की बात नहीं है, भाव योग और द्रव्य योग दोनों ही आत्मा पर घटित करना है। ये परिस्पंदन की जो शक्ति है उसको भाव योग कहा, और एक्चुअल परिस्पंदन है उसको द्रव्य योग कहा। फिर शंका, यदि ऐसा है तो अयोगी जीव नहीं होते, क्रिया सहित जीव द्रव्य को अक्रिय मानने में विरोध आता है। यदि ऐसा है तो अयोगी जीव नहीं होते, क्योंकि क्रिया सहित जीव द्रव्य को अक्रिय मानने में विरोध आता है। यानी अयोगी को अक्रिय मानेंगे तो वो जीव ही नहीं, क्योंकि जीव तो क्रिया सहित है, अभी वो क्रिया रहित हो जाए तो उसको जीव ही नहीं मानेंगे, ऐसा इसका कहना है। यह कोई दोष नहीं, क्योंकि आठों कर्मों के क्षीण हो जाने पर जो ऊर्ध्वगमन उपलम्बी क्रिया होती है वह जीव की स्वाभाविक क्रिया है। अभी इसको कल समझाना पड़ेगा, ये पूरा ही हम कल ले लेंगे, क्योंकि अभी पढ़ने में और समझाने में टाइम जाएगा। कल इसको यहाँ से फिर लेते हैं, शंका से यहाँ फिर दोबारा ले लेते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक न हो सदा देत होड़ो। मयंक भाई।